राजवंशी महल में नंदिनी चुपचाप बैठी थी। उसने चारों ओर अपनी नज़र घुमाई, लेकिन ईप्सिता कहीं दिखाई नहीं दी। नंदिनी मन ही मन बोली, इतना बड़ा महल है, मैं ईशु को ढूंढ भी नहीं पाऊंगी, और पता नहीं उसकी ननद उसे कहाँ ले गई है। नंदिनी चारों ओर देख रही थी, तभी उसकी नज़र अर्पिता के पति जयराज पर पड़ी। वो सामने बैठा उसे घूर रहा था, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। जैसे ही नंदिनी की नज़र जयराज पर पड़ी, वो उठकर खड़ी हो गई। उसने मन में कहा, ये तो अर्पिता दी के पति हैं, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। नंदिनी असहज महसूस करने लगी। वो उठकर आगे बढ़ ही रही थी कि उसका पैर मुड़ा और वो लड़खड़ा गई। उदय वहां पास में ही खड़ा था। उसने जल्दी से नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, आराम से नंदिनी, आप ठीक है ना। वहीं उदय के सामने खड़ा अभिमन्यु नंदिनी की ओर देखकर बोला, क्या बात है, आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हैं। नंदिनी ने अभिमन्यु की बात सुनकर सिर हिलाते हुए कहा, कहीं नहीं जीजू, वो बस मैं। इतना बोलते हुए नंदिनी चुप हो गई। उदय ने पूछा, नंदिनी आप ईशु को ढूंढ रही हैं क्या? डोंट वरी, वो थोड़ी ही देर में आ जाएगी। नंदिनी ने उदय की बात सुनकर कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहीं उन दोनों के पास खड़ी हो गई। उदय और अभिमन्यु अपने काम को लेकर बात कर रहे थे। नंदिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो जयराज अभी भी उसे घूर रहा था। नंदिनी काफी असहज हो गई और वो उदय के बिल्कुल बगल में आकर खड़ी हुई। उसने मन में कहा, पता नहीं क्यों मुझे मिस्टर जयराज आज बहुत अजीब लग रहे हैं, वो मेरी तरफ इस तरह से घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं। वो उदय के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई थी। दरअसल नंदिनी उदय के पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी ताकि जयराज की नज़र उस पर ना पड़े। वो तीनों वहीं खड़े थे कि अभिमन्यु की माँ सा ने उन्हें आवाज़ दी, अभिमन्यु बेटा इधर आइए। अभिमन्यु ने उदय से कहा, एक्सक्यूज मी, हम अभी आते हैं। उदय ने हाँ में अपनी पलकें छपकाई। नंदिनी की ओर उदय की नज़र गई। उदय नंदिनी को अपने इतने करीब देखकर मन ही मन बोला, इस नंदिनी को क्या हो गया है, वो हमारे इतने नज़दीक क्यों आ रही है। उदय ये सोच रहा था और नंदिनी उसके इतने करीब खड़ी थी कि उदय को बहुत अच्छा भी लग रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन वो यही चाहता था कि जितनी देर हो सके नंदिनी इसी तरह उसके नज़दीक खड़ी रहे। अभिमन्यु अपनी मासा के बगल में जाकर बैठ गया। मासा ने कहा, हमने यहाँ पर आप दोनों की शादी की बात करने के लिए ही बुलाया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि शादी में ज़्यादा देरी हो, इसलिए हम चाहते हैं कि शादी एक हफ्ते में ही हो जाए, अगर आप लोगों को कोई परेशानी ना हो तो। और शादी की तैयारी की चिंता आप लोग मत करिएगा, हम शादी की सारी तैयारियां खुद करवा लेंगे। जैसे ही मासा ने ये बात कही, सुहासिनी जी और उनके पति मिस्टर अमरजीत एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। मिस्टर अमरजीत सूर्यवंशी ने कहा, रानी सा, हमें शादी के डेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक हफ्ते में शादी, ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं हो जाएगी। रानी सा ने जवाब दिया, दरअसल हम ईप्सिता को जल्द से जल्द अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं और जल्दी शादी होना हमारे अभिमन्यु के लिए ज़रूरी भी है। सुहासिनी जी अपने पति की ओर देख रही थीं। उन्होंने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ठीक है रानी सा, हमें मंजूर है, हम एक हफ्ते में शादी की सारी तैयारी कर लेंगे। जैसे ही सुहासिनी जी ने ये बात कही, ठीक उसी समय ईप्सिता भी अर्पिता के साथ वहां आ पहुंची। उसने जैसे ही अपनी माँ के मुँह से ये बात सुनी, वो हैरान होते हुए मन ही मन बोली, क्या एक हफ्ते में शादी। उदय और नंदिनी भी ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो गए थे। नंदिनी की नज़र जैसे ही ईप्सिता पर पड़ी, वो ईप्सिता के बगल में जाकर खड़ी हो गई। वो दोनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देख रही थीं। अर्पिता ने ईप्सिता को गले लगाते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस भाभी, अब आप एक हफ्ते में ही यहाँ बहू बनकर आ जाएंगी, मैं बहुत खुश हूँ। इतना बोलकर अर्पिता भी अपने पति के बगल में आकर खड़ी हो गई। वहीं नंदिनी और ईप्सिता एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगीं। वो दोनों काफ़ी परेशान लग रही थीं। ईप्सिता के चेहरे पर जो परेशानी थी उसे अभिमन्यु ने नोटिस कर लिया। अभिमन्यु ने ईप्सिता को परेशान होते हुए देखा और वो उसकी ओर जाने लगा। तभी नंदिनी ने ईप्सिता को अलग ले जाकर धीमी आवाज़ में कहा, यार ईशु, ये तुम्हारे ससुराल वाले तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में लग रहे हैं, एक हफ्ते में अगर ये लोग तेरी शादी करवा रहे हैं तो फिर इसका मतलब तेरे एग्ज़ाम और तेरी पढ़ाई सब छूट जाएगी। ईप्सिता के मन में भी यही बात चल रही थी। नंदिनी के मुँह से ये बात सुनकर ईप्सिता का डर और भी बढ़ गया और वो हैरानी से नंदिनी की ओर देखने लगी। नंदिनी ने भी थोड़ा सोचते हुए कहा, मुझे नहीं लगता तेरी शादी हो जाने के बाद तुझे यहाँ के लोग इस राजमहल से बाहर भी निकलने देंगे, वो भी एग्जाम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ईप्सिता की आंखों में आंसू आ गए। अभिमन्यु, जो ईप्सिता की ओर ही आ रहा था, उसने अनजाने में ही नंदिनी और ईप्सिता की बातें सुन ली। नंदिनी ने ईप्सिता की ओर देखकर उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे लगता है तुझे इस बारे में कुछ तो बात करनी चाहिए। नंदिनी ने जैसे ही ये बात कही, ईप्सिता परेशान होते हुए बोली, पागल हो गई हो क्या तुम नंदिनी, ये हमारा होने वाला ससुराल है, यहाँ पर तो हम अभी कुछ भी नहीं बोल सकते। नंदिनी ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने हैरान होते हुए कहा, इसका मतलब तेरी पढ़ाई और तेरा ये पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। नंदिनी के मुंह से ये बात सुनते ही ईप्सिता की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल किया और जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगी, लेकिन अभिमन्यु जो थोड़ी दूर पर खड़ा इप्सिता की ओर ही देख रहा था उसने उसके आंसुओं को भी नोटिस कर लिया। वो इप्सिता को रोते देखकर बिल्कुल हैरान हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, इप्सिता अभी तक पढ़ाई कर रही हैं, मतलब अभी उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। लेकिन मासा ने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हमें इस बारे में पता करना होगा कि आखिर इप्सिता किस चीज की पढ़ाई कर रही हैं और उनके एग्जाम कब हैं। हमें ये सारी बातें पता करनी होंगी। अभिमन्यु ये बात सोच ही रहा था कि इप्सिता की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, रानीसा हमें आपकी सारी बातें मंजूर हैं, आप जैसे कहेंगी हम वैसे कर लेंगे। इप्सिता ये बात सुनकर और भी ज्यादा उदास हो गई। वो सब लोग बात ही रहे थे कि पीछे से हॉल के मेन गेट की तरफ से आती हुई किसी की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंजी। क्या बात है, हमारे बगैर सगाई कर ली, क्या आप शादी भी हमारे बगैर ही हो जाएगी? उस आवाज को सुनकर हॉल में बैठे सभी लोगों ने अपनी नजरें पीछे घुमाई। वहां पर ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पर व्हाइट कलर का ब्लेजर पहने हुए एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था जो सीधे अंदर की ओर आया। उसने रानीसा के पैरों को झुककर छुआ। रानीसा उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, कैसी बात कर रहे हैं आप समर्थ, आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि हम अभिमन्यु की शादी में आपको नहीं बुलाएंगे? समर्थ को देखकर नंदिनी उसे सिर से पांव तक घूरने लगी। समर्थ सीधे अभिमन्यु के बगल में आकर खड़े होते हुए बोला, शादी की तैयारी शुरू कर दी तुमने और मुझे बुलाया भी नहीं, ये तो कहो आज मैं खुद से ही आ गया, वरना आज भी तुम मुझे यहाँ हो रही बातों के बारे में ना बताते। अभिमन्यु ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं यार कैसी बात कर रहे हो तुम, हम भला तुम्हें इस बारे में क्यों नहीं बताते, हम तुम्हें बताने वाले थे। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि समर्थ ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, कब बताते, शादी वाले दिन या फिर जब तुम्हारी बारात जा रही होती तब? नंदिनी उस लड़के को देखकर काफी खुश लगने लगी, जैसे उसे कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे वो अब तक ढूंढ रही थी। उसकी नजरें समर्थ पर ही जम गई थी। उसने इप्सिता के कंधे से अपना कंधा टकराते हुए कहा, ये कौन है ईशु, कितना हॉट और हैंडसम है, जीजू ने तो हमें बताया ही नहीं था, उनका कोई छोटा भाई है क्या?
इप्सिता का तो पहले से ही मूड खराब था, ऊपर से नंदिनी के सवालों ने उसे और भी ज्यादा चढ़ा दिया। नंदिनी को घूरते हुए इप्सिता ने कहा, हमें क्या पता, होगा कोई। नंदिनी ने इप्सिता की बात पर ध्यान नहीं दिया और वो उस लड़के को घूरते हुए देखकर ज्यादा मुस्कुराने लगी। क्रमशः